मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFAIS के आज 28 अक्टूबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी विकास शर्मा का जो बस्ती उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 7 से 21 मार्च के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत हम लोग भारत अमेरिका के बीच जो कल समझौता हुआ है उस पर थोड़ी सी बातें करेंगे, लेकिन आइए इससे पहले दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लेते हैं। जी हाँ, मैंने कहा दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लेते हैं, और शायद जब मैं ये कह रहा हूं कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लेते हैं तो एक घटना का तो शायद आप अनुमान न लगा पाएं क्योंकि वो न्यूज़ में भी नहीं थी घटना और अखबारों में भी कहीं कहीं ये छपी है और किसी किसी अखबार में छपी है, इसलिए दूसरी घटना का अनुमान अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो आप बिल्कुल निराश नहीं होइए, लेकिन पहली घटना का अनुमान डेफिनेटली आपने लगा लिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह घटना है जम्मू कश्मीर में अभी जो भू स्वामित्व कानून में जो परिवर्तन किया गया है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, उसके बाद सरकार ने वहां से जो अनुच्छेद 370 को हटाया, 35A को हटाया लगभग एक साल पहले, उसके बाद से वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और ऐसी स्थिति में अब वहां केंद्र के हाथ में सभी अधिकार हैं और केंद्र वहां अपने ढंग से वहां की आवश्यकताओं को देखते हुए कानून ला रहा है। अभी तक वहां की स्थिति यह थी कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहरी व्यक्ति जो वहां का स्थायी नागरिक नहीं, और स्थायी नागरिक की परिभाषा भी वहां थोड़ी सी कठिन किस्म की है, जमीन नहीं खरीद सकता था। अब जमीन नहीं खरीद सकते थे, अब इसमें बाकायदे परिवर्तन कर दिया गया है और परिवर्तन ये किया गया है कि अब कोई भी व्यक्ति बाकायदे जम्मू कश्मीर में, यानी कि कह लीजिए केंद्र शासित प्रदेश में, जमीन खरीद सकेगा। लेकिन यहां थोड़ी सी अभी एक बात है, अखबारों से वो बहुत क्लियर नहीं हो रही है कि एक बात तो बहुत क्लियर है कि यदि आप वहां कोई उद्योग लगाना चाह रहे हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं, अगर कोई बहुत बड़ा अस्पताल खोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए बकायदे आप जमीन खरीद सकते हैं, उसके लिए खरीद सकते हैं, लेकिन जो कृषि योग्य भूमि है उसके बारे में अभी अखबारों से बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। कुछ अखबार ये लिख रहे हैं कि नहीं, कृषि योग्य जो भूमि है वह नहीं खरीदी जा सकती। कुछ अखबार ये लिख रहे हैं कि नहीं, जो किसान है चाहे वो भारत में कहीं भी रह रहा हो, अगर खेती करना चाह रहा है तो वो जमीन खरीद सकता है। कुछ अखबारों ने यह भी लिखा है कि इसके बारे में अभी स्पष्टता नहीं है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपने जो कुछ भी पढ़ा हो फिलहाल अपने दिमाग में ये बात रखिए कि अगर आप वहां स्वास्थ्य सेवा शुरू करना चाह रहे हैं चिकित्सा क्षेत्र में, या फिर आप उच्च शिक्षा के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप बकायदे जमीन खरीद सकते हैं, राइट? या आप ये इस बात का ध्यान रखिए। अब जब ये बातें और क्लियर हो जाएंगी तो मैं आपके सामने वो रखूंगा। दोस्तों, अब आप देखिए कि इससे होगा क्या। सिविल सर्विस में सीधे सीधे ये नहीं पूछा जाता कि क्या क्या हुआ है, उससे होगा क्या। जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन मुझे दो दिखाई दे रहे हैं, जो सबसे बड़े परिवर्तन होंगे, पहला तो यह है कि अब यह कानून बकायदे जो जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसके विकास के लिए एक संजीवनी बूटी साबित होगा, क्योंकि अब वहां उद्योग लग सकेंगे और बकायदे वहां उद्योग लगाए जाने के प्रस्ताव आने भी लगे हैं कि हम यहां ये उद्योग लगा सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। क्योंकि आप जमीन ही नहीं खरीद सकते तो सीधी सी बात है कि औद्योगिक निवेश में बाधा दिखाई दे रही है, तो वो बाधा अब बिल्कुल खत्म हो गई है, तो डेफिनेटली वहां औद्योगिक निवेश बढ़ेगा तो वहां के विकास को गति मिलेगी। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब नया जो कानून आया खासकर भूमि स्वामित्व को लेकर के, तो वहां जो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और जो जनसांख्यिकीय संतुलन है उसका आप यूं कह लीजिए कि एक स्वतंत्र तंत्र विकसित होगा, बिल्कुल स्वतंत्र स्वतः तंत्र विकसित होगा कह लीजिए अपने आप। अब आप देखिए कि वहां चलिए किसी एक विशेष वर्ग के लोग रह रहे हैं, विशेष धर्म के विशेष जाति के, उनका आप यूं कह लीजिए बहुसंख्यक वर्ग है, तो अब लोग जाएंगे, नए नए लोग जाएंगे बसेंगे, तो एक बहुलवाद जिसे भारत कहता है या भारत की जो अपनी समन्वयात्मक संस्कृति रही है उसी तरह की जनसांख्यिकी वहां बन सकेगी, तो इसका जो सीधा सीधा प्रभाव है वो वहां जो अलगाववाद और जो आतंकवाद की इस तरह की घटनाएं बीच बीच में आपको सुनने को मिल जाती हैं, डेफिनेटली वह कमजोर होगी, उन घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। तो ये दो जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं वो आपके ध्यान में रहने चाहिए। फ्रेंड्स, जो दूसरी जो घटना है वह अपने आप में एक थोड़ी सी नई सी घटना है, लेकिन छोटी सी घटना भली लगे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, और वह यह है कि जो केरल है वो देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने किसानों के लिए जो फल और सब्जियां हैं, उनके द्वारा जो फल और सब्जियां उत्पादित की जाती हैं, उनका न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है। ये आपको ध्यान में रखना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको मालूम है कि हमारे यहां जो खाद्यान्न है, दलहन है, तिलहन है, इनके न्यूनतम मूल्य केंद्र सरकार निर्धारित करती है, और अभी जब वो तीन विधेयक केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए थे तो उसके विरोध में किसानों का यही मानना था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो न्यूनतम मूल्य का निर्धारण करना केंद्र सरकार बंद कर दे, इसको लेकर के उनके मन में बहुत आशंका थी जिसकी वजह से राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने लगे। अब आप देखिए कि केरल सरकार यहां क्या कर रही है। चलिए खाद्यान्न और तिलहन और ये सबके न्यूनतम मूल्य तो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी ही करेगी, लेकिन अब राज्य ने फल और सब्जियों के भी न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिए हैं जो अभी तक केंद्र भी नहीं करती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि प्याज के न्यूनतम मूल्य निर्धारित है, टमाटर के निर्धारित है, सेब के निर्धारित है, नहीं, वो बाजार मूल्य से उनका निर्धारण होता था और इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। आप एक उदाहरण दे सकते हैं कि बकायदे महाराष्ट्र में 3 साल पहले किसानों को अपना अंगूर 10 रुपए किलो बेचना पड़ा था, 10 रुपए किलो, जबकि जो लागत आ रही थी वह लागत आ रही थी 40 रुपए किलो। अब आप देखिए कि किसान इतनी मेहनत कर रहा है, 30 रुपए प्रति किलो का उसे नुकसान हो रहा है, इसका दुष्प्रभाव क्या होगा? सीधी सी बात है कि किसान उन वस्तुओं का, उन फल सब्जियों का उत्पादन करना बंद कर देंगे क्योंकि उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। तो अब जबकि न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया गया है तो स्वाभाविक तौर पर इनके उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, और केरल ने जो अपना फार्मूला लिया है वो ये है कि जिन सब्जियों फलों के उत्पादन की जो लागत आती है उस लागत से 20% अधिक न्यूनतम मूल्य का निर्धारण किया गया, 20% मोर, यानी कि वह किसानों का लाभ होगा। स्वाभाविक है कि चूंकि केरल सरकार ने अब इसकी शुरुआत कर दी है तो जो दूसरे राज्य हैं, जैसे अभी मैंने महाराष्ट्र की बात की, पंजाब हैं और जो दूसरे राज्य हैं, इस तरह की मांग करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हो गई है। तो दोस्तों, चूंकि केरल ने इसकी शुरुआत की है तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना ही चाहिए और ये आपके दिमाग में भी रहना चाहिए ताकि जब भी किसानों से संबंधित, कृषि के उत्थान विकास से संबंधित कोई प्रश्न आए तो उसके उत्तर में आप इसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कर सकें कि भाई ऐसा किया जाना चाहिए जैसा कि केरल ने किया है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, भारत और अमेरिका के बीच में जो एक समझौता हुआ है, बीका समझौता, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यह समझौता बेसिकली है क्या, इससे क्या होगा, 2-3 पॉइंट आप जान लीजिए। पहला तो यह है कि इस समझौते के बाद अब जो है बकायदे अमेरिका हमारे जो नेवी है, जो नौसेना है और हमारे जो एयरफोर्स है, वायुसेना है, उसको जरूरी जो हमारे लिए उपकरण हैं वो दे सकेगा, आधुनिकतम उपकरण दे सकेगा। ठीक इसी तरह से जो अमेरिका है, जो क्रूज मिसाइल हैं, उसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं और जो ड्रोन संबंधी उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को ट्रांसफर कर सकेगा, और बकायदे अमेरिका से जो संवेदनशील सैटेलाइट डेटा हैं वे हमें मिल सकेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण समझौता है। महत्वपूर्ण क्यों है? अभी मैंने जो 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं, देखिए मैं जानबूझकर के कम पॉइंट्स ले रहा हूं, जो बहुत बेसिक जो प्राथमिक चीजें हैं वही आपको जानना है क्योंकि आप इसको इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट के तहत नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, हम तो जनरल स्टडीज की बातें कर रहे हैं। तो इन तीनों में आपने देखा होगा कि यह एक प्रकार का सैन्य समझौता जैसा है, और है ये सैन्य समझौता। अब सवाल यह उठता है कि यह सैन्य समझौता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? अमेरिका इसमें शामिल हो रहा है, अमेरिका को ऐसी क्या जल्दी पड़ी है या भारत इसके लिए क्यों इतना ज्यादा प्रतिबद्ध है, तो आपको साफ साफ ये दिखाई देगा, समझ में आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा जो हिंद प्रशांत क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा भी कर चुके हैं, इसमें चीन लगातार अपना प्रभुत्व बढ़ाता चला जा रहा है। और ये केवल भारत के लिए ही चिंता का कारण नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए भी चिंता का कारण है, जापान का के लिए भी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है। और इसीलिए आप देखिए कि क्वाड जैसा संगठन तैयार हो गया, प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, इसके बारे में भी हम लोग बातें कर चुके हैं। अभी आप देखिए कि हमारा जो पूर्वी लद्दाख है वहां चीन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है, सेना उसकी आकर के खड़ी है, कितने ज्यादा तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे चीन एक आक्रामक रुख लिए हुए और अमेरिका और चीन के बीच में जो तनातनी चल रही है, एक किस्म का जो कोल्ड वार चल रहा है, उससे आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। शीत युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, ओपन वार जैसी भी स्थिति हो जाती है जब दोनों एक दूसरे के बारे में धमकियां देते हैं, तो इसके इस वजह से अमेरिका भी इसके लिए उत्सुक है और भारत भी इसके लिए उतना ही उत्सुक था। भारत के लिए एक और भी बहुत क्लियर स्थिति थी और वो ये कि आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे चीन पाकिस्तान को आप कह लीजिए कि अपना बहुत ज्यादा मित्र बना चुका है, अफगानिस्तान में भी उसकी लगातार कोशिश हो रही है, नेपाल में भी वो अपनी जड़ें जमा रहा है। और हम लोगों ने लगभग 1.5-2 महीने पहले बात की थी कि ईरान में जो भारत रेलवे लाइन तैयार कर रहा था, भारत ने अब विड्रा कर लिया है, तो धीरे धीरे अब ये ईरान में भी जाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि चीन अब आप देखिए कि किधर आ रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और ईरान। आप नक्शे में जाकर के देखिए कि अगर इन देशों की बहुत अच्छी साठगांठ आप कह लीजिए चीन के साथ हो गई, या चीन ने इनके साथ बहुत अच्छी साठगांठ कर ली, तो यह भारत के लिए फिर बिल्कुल एक नई चुनौती की स्थिति हो जाएगी। तो भारत के लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण समझौता था। तो दोस्तों, यह समझौता हो गया है और इस समझौते के साथ ही जो संयुक्त घोषणा हुई है उसमें और भी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। साफ साफ कहा गया है कि पाकिस्तान खासकर जो आतंकवाद के खिलाफ जो काम है उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करे, अपने भूमि का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए न होने दे। यहां तक कि इस समझौते के बाद जो संयुक्त बयान जारी किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो दूसरे छोटे छोटे देश हैं उनके साथ भी सैन्य सहयोग किया जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह नहीं कि केवल भारत और अमेरिका के बीच में ही है, वो तो समझौता हो चुका है, लेकिन आगे भविष्य के लिए कहा गया कि छोटे छोटे देशों के साथ भी इस तरह के समझौते होंगे। बकायदे सूचना केंद्र नियुक्त किए जाएंगे, उसमें अमेरिका के 9 सैनिक अधिकारी होंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझौता है और अमेरिका के लिए भी उतना ही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसी तरह का जो 2 सैन्य समझौते इससे पहले भी हो चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा अलग से, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक है लिमोवा, LEMOA, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये 2016 में हुआ था, और 2 साल के बाद 2018 में फिर एक दूसरा एग्रीमेंट हुआ किस्मोंगा, CISMOA, कम्युनिकेशन इंटर ऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और अभी जो ये समझौता हुआ ये है BECA, जिसे आप कहते हैं बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। कुछ इसके आगे भी लिख रहे हैं फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं नीलेश रंजन, ए रक्षत, सुशीला पाटन नागौर राजस्थान से, और सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।